حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ اظہار مطلب، مجھے پرچہ تو دیا گیا تھا فاتحہ خوانی کے نانوں کے، لیکن مجھ سے مس ہو گیا۔ آپ سے درخواست کروں گا ان سب کی نیت کرتے ہوئے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ، اور ایک گزارش اور ہے آپ سے، ایک غالباً جو میرے میموری میں ہے نام، عقیل صاحب جو مریض ہیں، شدید کسی حادثے کا شکار ہیں، ان کی صحت کے لیے ہمارے بزرگوار و محترم علامہ رضی جعفر صاحب کے صاحبزادے حسن جعفر نقوی صاحب بھی علیل ہیں، اپنے بھی مریضوں کو شامل کر کے دعا کریں۔ تمام مریضوں کو پروردگار بحق بیمار کربلا صحت کاملہ و عاجل عطا فرمائے۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات جنائے فرما دیجیے گا۔ بس عزیزان محترم، کل ہم نے شروع کر دیا تھا موضوع جناب امیر مختار کا، جہاں تک ہو سکتا تھا مختصر سا ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک بااثر خاندان ہے، بااثر سیاسی اور سماجی خاندان، معمولی خاندان کے فرد نہیں ہیں، جس کا سیاسی اثر و رسوخ ہے، اور اتنا سیاسی اثر و رسوخ ہے کہ دوسرے دور میں ان کے چچا کو گورنر بنایا گیا تھا مدائن کا، 16 ہجری میں غالباً یا 17 ہجری میں، 16-17 ہجری کا زمانہ ہے، جب کامل فتح ہو گئی تھی، فتح حاصل ہو گئی تھی ایران پر، تو اس میں ان کو مدائن کا گورنر بنایا گیا، جو تیسرے دور میں بھی ان کا یہ منصب رہا، مولا کے دور میں بھی، جو ظاہری دور ہے مولا کا اس میں بھی یہ منصب رہا، حتیٰ کہ امیر شام کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو عہدے سے ہٹا تھا، بس یہ ہوا کہ شہر بدل دیا، مدائن سے ہٹا کے موصل بھیج دیا، ورنہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے تک سعد ابن مسعود ثقفی جو چچا ہے جناب امیر مختار کے، یہ وہاں حاکم ہے، گورنر ہیں، اور یہ پورا خاندان بہت ہی بااثر۔ اور دوسرا رخ تصویر کا میں نے وہ دکھا دیا آپ کو کہ ان کی جو بہن ہے ایک صفیہ، وہ عقد میں ہیں کس کے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں ہیں۔ یہاں ایک یہ الگ آگے اس کے نتائج معلوم ہوں گے، اور اس زمانے میں ویسے بھی آپ جانتے ہیں کیونکہ ایسا مسئلہ نہیں تھا، یہ حکمت الہی ہوتی ہے کہ کس کو کہاں رکھا جائے۔ اگر آپ مین میخ نکالنا شروع کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا، تو یہاں یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، یہ رشتہ یہاں کیوں، وہ رشتہ وہاں کیوں ہوا، تو میں کل عرض کر چکا کہ بات پھر پتہ نہیں کہاں تک چلی جائے گی، پھر کہاں کہاں آپ یہ سوال لے کر جائیں گے۔ تو یہ مشیت الہی ہے، اس کے اثرات کبھی بعد میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی جلدی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی بہت دیر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب آج کوفے کا ذکر کرنا ہے کہ کوفہ کیا ہے، یہ دو پس منظر بن جائیں گے۔ جب تک یہ پس منظر آپ کے سامنے نہیں بنیں گے، جناب امیر مختار کے واقعات پڑھنے کا وہ لطف نہ مجھے آئے گا، آپ کو بھی تشنگی محسوس ہوگی۔ جب تک پورا سیاسی منظرنامہ ہمارے سامنے نہ آ جائے، پس منظر نہ آ جائے کہ کوفہ تھا کیا، کیسا شہر تھا، کس قسم کے لوگ تھے، کہ آج تک ہم ان کوفیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کیا تھا کوفہ؟ اب یوں تعارف یوں شروع کرا دوں میں آپ کو کہ کوفہ ایسا شہر ہے، یہ آپ کو بتا دوں کہ صفین میں، مدینے سے، معذرت کے ساتھ، چلے تو امیر شام سے لڑنے کے لیے ہی تھے، لیکن راستے میں وہ جمل والا مسئلہ پیش آیا، तो रास्ता बदल के मौला कायनात बसरे की तरफ चले गए। तो आपको ये बता दूं कि मदीने से मौला के साथ सिर्फ 1000 आदमी चले थे, लश्कर 1000, मदीने के लोग यानी लश्कर में कितने थे 1000, और कूफे के जो आए वो कितने थे 12000, 12000 कूफे के थे। और आज तक ये भी बता दूं कि अगर औसत निकालेंगे ना आप कुर्बानियों का, शुहदा की कुर्बानियों का औसत, ये नहीं कह रहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शहीद कूफे ने दिए, नहीं, औसत, औसतन आबादी के औसत के हिसाब से, तो आपको ये समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा शुहदा जो हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ कूफे वालों ने दी हैं, सबसे ज़्यादा शहीद आज तक, आज तक कूफे वाले, कूफे के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर क्या मसला है, फिर ये क्यों ज़रबुल मसल बन गया जुमला कि अलकूफ़ी लायूफ़ी, कि कूफियों से वफा नहीं है। यह आज इसका इंशाल्लाह जवाब देंगे और ये कूफे का पस मंज़र कायम हो जाएगा। आज कल हमने जनाब मुख्तार का थोड़ा सा तारुफ करा दिया जहाँ तक कराना चाहिए था, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सिलसिला आगे बढ़ेगा उसी हिसाब से जैसे तसलसल बढ़ता है तारीख का सिलसिला। आप हज़रात मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, एक सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए कूफा कोई पहले से शहर नहीं है, कूफे के पास एक आबादी है बहुत मशहूर जिसका नाम है हीरा, उस जमाने में हीरा, एक कोस 3-3.5 किलोमीटर के फासले पे, 3-3.5 मील के फासले पर। आज वो हीरा कूफे का एक मोहल्ला है, आज भी वो हीरा जगह है लेकिन कूफे का एक मोहल्ला है। कूफा इतना बड़ा शहर हो गया कि उसका एक मोहल्ला है, पहले हीरा में आबादी थी और थोड़ी थोड़ी आबादियाँ बिखरी थी। कूफे नाम तो था जगह का लेकिन कूफे में कोई शहर या कोई आबादी नहीं थी। क्या वजह थी, आपको यूं मिसाल देते हैं, गाजरिया एक बस्ती का नाम है गाजरिया, ये कौन सी बस्ती है जिसमें बनी असद रहते थे करबला के साथ, ना आप सुनते ना मारिया नैनवा गाजरिया करबला ये सब नाम सुनते, तो गाजरिया उनकी, गाजरिया उस जगह का नाम था जहाँ वो कबीला आबाद था, ठीक है, करबला उस वक्त भी थी ज़मीन लेकिन करबला में आबादी नहीं थी। तो जगहों के नाम होते हैं आबादियाँ नहीं होते। आप सफ़र करते हैं, मैं तो बहुत जाहिर के बाई रोड सफ़र करता हूँ तो पता नहीं कितनी जगह ऐसी हैं, तो नाम तो उनके रखना पड़ते हैं ना कुछ ना कुछ, नाम तो है उनका मगर वहाँ आबादी नहीं होती। तो कूफा नाम तो है मगर आबादी नहीं है, शहर नहीं है उस वक्त। कब आबादी बनी है, कब शहर बना है, कूफे के माने पहले समझ लीजिए, कूफे के माने क्या है। बेटा थोड़ा सा पानी दे, जरा सा अब मेरा साथ अब तल कर लूँ, आप एक बार और सलावत इनायत फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह। पहले मैं आपको इब्तिदाई में शुक्रिया अदा कर दूँ कि कल के बयान के बाद मैं ज़हनी तौर पर तैयार होकर आया था कि 15-20 आदमियों में पढ़ना है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे मेरा हौसला, असल में आज मेरी हौसला अफजाई भी मुझे मालूम है कि लोग सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, सुनाने वाले नहीं हैं या सुनाना नहीं चाहते, सबको नहीं कह रहा, खुदा ना करे ऐसा ना कहिएगा कि मैं कोई ऐसा बात कर रहा हूँ कि मैं बस अकेला बोलने वाला हूँ और कोई बोल नहीं, अल्लाह सलामत रखे, हम तो बहुत ही हकीर फ़कीर से तालिबे में छोटे से, हमसे बड़े बड़े बोलने बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल मुझे ये गुमान था क्योंकि मेरी ज़बान में इतना भाई असर भी नहीं है, मैं इतना खुश बयान भी आदमी भी हूँ, तो लिहाजा मुमकिन है कि कल मजमा साफ़ हो जाएगा, नहीं होंगे लोग, मगर आपकी आमद बता रही है कि हमारे बच्चे हमारे जवान यानी अभी ज़िंदगी है, हरारत है, अभी हरारत ख़त्म नहीं हुई, और जब तक ये हरारत मौजूद है कोई परवाह नहीं, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए इंशाल्लाह मिलकर उसका सामना कर लेंगे सब यार। जज़ाकल्लाह। तो आइए, असल में दो वजूहात बयान की जाती हैं, कोई तीसरी वजह नहीं है कूफे के नाम को कूफा पढ़ने की। एक कहते हैं कि असल में जगह का नाम था कुफवान या कफवान, कफवान कहते हैं जमा होने की जगह को, किस वजह से पढ़ा नहीं मालूम, इस्तेमाल होते होते वो कूफा बन गया। दूसरी वजह समझ में आती है क्योंकि फरात थोड़े से फासले पर है ना, तो आपने देखा साहिल पे जैसे हमारे दरिया सिंध के साहिल पे हैदराबाद के पास जाएं तो सिर्फ सब्जा ही सब्जा नहीं है, कुछ इलाका ऐसा भी आता है जो सिर्फ रेतीला रहे, सिर्फ रेत है, बारीक से रेत ही रेत है ना, ऐसा होता है दरिया के साथ, ज़रूरी नहीं कि सब्जा ही हो, रेत भी होती है, हमने खुद देखी। ज़ाहिर ज़िंदगी गुजारी है तो समझा, रेत भी है कहीं, सब्ज़ा है कहीं रेत है, कहीं मैदान है, ऐसे ही है ना, और कहीं सख्त पत्थर भी है जिससे टकरा के पानी कटाव पैदा करता है, वो चट्टानें भी आती है ना, वो आपने देखा होगा। अच्छा, ये कूफा नाम की वजह बताना चाह रहा हूँ कि फरात थोड़े से फासले पर ही है ना, दरियाए फरात कूफा से, तो ये रेतीला इलाका है, लेकिन ऐसा रेतीला इलाका जिसमें कंकरियाँ पाई जाती हैं। बाज दफ़ा सिर्फ रेत है ना, रेगिस्तान में सिर्फ रेत होती है, पत्थर वत्थर थोड़ी होते, कंकरियाँ नहीं होती, तो वो तो रेगिस्तान। लेकिन अगर उस रेत में कंकरियाँ हो, यानी पत्थर नहीं, जिसको कंकरी से ज़रा बड़ा और पत्थर से छोटा, यूँ समझिए जिसको आप आम जबान में कहते रोड़ी, रोड़ी इस्तेमाल करते ना हम लोग सीमेंट के साथ, और हमारे पास अदबी लफ्ज़ है ही नहीं इसके लिए, मैंने ये सुना है रोड़ी, और कंकरी से ज़रा सा बड़ा होता है, पत्थर से छोटा होता है। तो यहाँ इस जगह पे रेत के साथ ये कंकरियाँ भी थी, यानी रोड़ी भी थी, लिहाजा इसलिए ऐसी ज़मीन को कहते हैं अरबी में कूफा, इसलिए इसका नाम पड़ गया कूफा। अच्छा, अब दूसरा सवाल का जवाब भी दे दें, वरना कहीं भी परेशान हो जाएंगे आप। अच्छा भाई, और तो जगह इतनी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ रेत के साथ रोड़ी है, वहाँ का नाम कूफा क्यों नहीं है? ये वजह थोड़ी है, ऐसी जगह हज़ारों हैं दुनिया में, लेकिन जिस जगह का जो नाम पड़ जाए, वो नाम पड़ गया, उस जगह का नाम कूफा पड़ गया, वहाँ पे लोग रहते नहीं थे, आबादी नहीं थी, आबादी वो छोटे छोटे गांव, जैसे मैंने हीरा का नाम लिया, हीरा गांव है, ये गांव है, वो गांव, छोटे छोटे गांव थे, आबाद थे, मुस्तकिल शहर कूफा नहीं था। जैसे कि नजफ, नजफ शहर कहाँ था? ये तो एक टीला था, और इस टीले के इलाके का नाम था गरीज, ये पे तशदीद है, क्या गरीज, गैन रे और ये मुशद्दद, यू अगर तनवीन के साथ पढ़ूं तो यूं पढ़ूं गरीजुन, ये इस जगह का नाम था जहां आज ये रोज़े अथर, रोज़े मुकद्दस, रोज़े मुनव्वरे, मौलाए आरिफान, मौलाए मुत्तकियान, अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, बस इसी मकाम की मुनासिबत से बाप की समझ में आ गया, वो जो वहाँ बहुत बड़े मर्ज तकलीफ भी गुजरे हैं मशर नजफ़ अशरफ में, इसी मुनासिबत से उलमा नस्बत देते हैं गरीज के मुनासिबत से गरवी के, वहाँ के होके आ गए या वहाँ रह लिए या वहीं के थे, हक हासिल है ना इंसान को। मतलब कोई नजफ से होके आता है तो अपने आप को लिखता है नजफ़ी, नजफ़ का नहीं है, लेकिन मैं 15-20 साल पढ़ के आ गया, कुम से होके आ गया, 20 साल पढ़ के आ गया, खैर अब 20-20 साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अब वो मैंने देखे 6-6 महीने वाले भी, 6 महीने आते हैं वहाँ रह के ज़ियारत के वीज़े पे, वो कुमी नाम के साथ लगा लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये कुम से होकर आया है, पढ़कर नहीं आया तो होकर ज़रूर आया है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये कोई पाबंदी किसी पर नहीं है। तो इसी तरह हमारे मोहतरम बुजुर्गवार आलिम दीन, जिनको आप हर साल समाअत फरमाते रहते हैं, तो कई लोगों की समझ में नहीं आता था कि भाई अकलुल गरवी क्या मतलब, तो अब समझ में आ गया आपकी कि ये हमारा मोहतबर, हमारे बुजुर्गवार, हमारे मोहतरम, अल्लाह इनकी तौफीकात में और इजाफा करे, इनके इल्म में और इजाफा करे। ये मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि पहले मैंने ऐसे जुमले कह दिए कि कोई किसी गलत फहमी में ना पड़ जाए। तो मेरे बहुत ही मोहतरम, मेरे बुजुर्गवार, आप भी सीखते हैं, मैं भी सीखता हूँ उनकी तकरीरें सुन के, तो मैंने ऐसा कर दिया, अब समझ में आ गया ये क्या मतलब है कि गरीजुन उस खास जगह का नाम है, तो वहाँ के मुनासिब से लोग, वहाँ के रहने वाले भी और जो वहाँ कस्ब फैज़ करके आते हैं, खास लोग, कब सारे करिए अपने साथ कोई नजफ़ी लगाता है कोई कुछ, वो अपने नाम के साथ ही लगा लेते हैं। समझ में आ गई हमारी बात, और अच्छी बात है। तो इस जगह का नाम, अभी आबादी थोड़ी थी, शहर थोड़ी था नजफ, कूफे से कुछ फासले पर था, ये टीला था गरीब। अब जब दरियाफ्त हो गई, यानी कब 150 साल के बाद, यानी हिजरी के, मौला की शहादत के तो 110-112 साल के बाद, लेकिन हिजरत के 150 साल के बाद जब वो पता चल गई ज़मीन, जगह मालूम हो गई सातवें इमाम के ज़माने में, तो अब वहाँ पे आबादी बनना शुरू हुई। अब जब आबादी बनना शुरू हुई तो गरीज, नजफ छोटे छोटे नाम थे, अब वो बन गया नजफ अशरफ। क्या बन गया? जैसे करबलाए मौला ऐसे ही हुआ ना, तो बस ये नजफ इसी तरह आबाद हुआ बाद। तो नजफ अलग है, कूफा अलग, लेकिन अब आबादी के मिलने से दोनों जुड़वा शहर बन गए, जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी। मालूम नहीं होता कि कहाँ पे नजफ खत्म हो गया, कहाँ कूफा शुरू हो गया, जैसे भी आप जाएंगे तो वो बिल्कुल मिले हुए शहर एक जैसे हैं। एक बार और सलवात इनायत फरमा दीजिए, अब क्या आया भाई, हो गया, कर लिया बेटा, ये पहली वही पर्चा जो मुझसे गुम हो गया था वो आया था दोबारा। बहरहाल एक सलावत और इनायत फरमा दीजिए। तो अब ये छोटी छोटी बातें सप्लीमेंट्री इसलिए जमीमा इसलिए करते जाते चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे बच्चों के जहन में रह जाएगा ना, बड़े तो जानते हैं बच्चों के जहन में रह जाएगा। आप कभी जिंदगी में किसी मौके पे कोई बात ऐसी छिड़ जाएगी तो उन्हें याद आ जाएगा, उनकी मेमोरी में वापस वो चीज़ आ जाएगी कि हाँ भाई ये बात हमने सुनी थी, कहीं सुनी थी, वो याद रह जाएगी। तो ये कूफा अलग शहर, नजफ बाद में बना, कूफा बड़ा शहर बना। अब कूफा कब बना? ईरान इराक फतह हो रहा है और फौजें बार बार जमा करनी पड़ती थी, यहाँ से बुलाओ, वहाँ से बुलाओ, वहाँ से बुलाओ, वहाँ से बुलाओ। तो हमेशा याद रखिए, फौजी छावनी ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ से फौज को फौज की नकल व हरकत में आसानी हो, फौज आसानी से मूव कर सके। अब तो एक एक मुल्क में बहुत सारी छावनियाँ हैं ना माशाल्लाह होती हैं, भाई यहाँ से मूव करेंगे तिमरट में यहाँ पहुँच जाएंगे, इस बॉर्डर पर, इस बॉर्डर पर, इस बॉर्डर, ऐसे होता है। तो ये कूफे में सबसे पहले हिजरी सत्रह में साद इब्न अबी वकास जो सर सालार हैं और जंगी माहिर भी हैं, तो उन्होंने कूफे को एक फौजी छावनी का सा आर्जी फौजी छावनी बना डाला। 1,56,000 डलवा दिए कि बाबा बार बार इधर से बुलाओ उधर से, यहाँ ला के डाल दो फौज को। जो फौज के मुलाजमीन हैं उस वक्त तो एक बाकायदा फौज बन चुकी थी ना, तश्कील पा चुकी थी, पहले दिन तक ऐलान हुआ सब आ जाओ। अब एक फौज बन गई थी, हाँ हमले के मौके पर रजाकारों को भी बुला लिया जाता था, आ जाओ भाई जो वॉलंटियर लड़ना चाहता है वो भी आ जाओ। तो ये आरजी छावनी बनाई, 1,00,000 झुग्गियाँ छप्पर जो भी गए आप खेमे डाल दिए गए, यहाँ फौज हर वक्त जमा रहती थी। ये एक उस जमाने में ये ऐसी जगह थी कि जहाँ से चारों तरफ नकलो हरकत में फौज के लिए बड़ी आसानी थी। अगर ईरान से अटैक हो, इराक की तरफ से, यहाँ से हो, चारों तरफ से मदीने भेजना, उधर भेजना हो, तो उस जमाने के नक्शे के मुताबिक, वो नक्शा मैंने देखा है, अभी आप भी बना सकते हैं कि जो इस्लामी सरहद है उसमें कूफे की फौजी अहमियत कितनी है। लिहाजा वहाँ उन्होंने उस फौजी छावनी को कायम कर दिया। अब जब मुस्तकिल वहाँ फौजी रह रहे हैं, बस रहे हैं, 80,000 से लेकर 1,00,000 फौजी तक रह रहे हैं, तो अब ज़ाहिर है उनकी दीगर ज़रूरियात, लिहाजा फैमिलीज को लाना शुरू कर दिया, ख़ानदानों को लाना शुरू कर दिया। अब वो जरा आप छोटे छोटे मोहल्ले, पक्के मोहल्ले बनने शुरू हो गए। और ये कूफा इसी तरह कबीलों में तकसीम था, फला मोहल्ला बनी हमदान का मोहल्ला, बनी तमीम का महल्ला, बनी फलां का महल्ला, बनी फलां का महल्ला, बनी फलां का महल्ला, ये सारे आपको नाम मिल जाएंगे कूफे में, कि कूफे में सब ने अपने अपने मोहल्ले कायम कर लिए। फिर वह पक्का और मजबूत शहर बन के आ गया और वहाँ के लोग वो कूफे के लोग कहलाने लगे, बाद में वो कहलाने लगे कूफी। हालांकि सब बाहर के आए हुए, और बाहर के आए हुए मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ कबीलों के लोग हैं, मुख्तलिफ कबीलों के लोग, एक जगह के नहीं है, क्योंकि कैपिटल है ना कूफा, हर जगह से लोग आके यहाँ बन गए। अभी कैपिटल नहीं बना, अभी क्या है, कैंट है, छावनी है, कैंटोनमेंट है, छावनी है सब जगह के फौजी वहाँ के। अब जहाँ भी फौज भेजना होती थी यहाँ से आगे रवाना किया जाता था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, पूरा एक शहर वजूद में आ गया, वो छावनी गिर्द एक पूरा शहर बन गया। वो कूफा फिर इतना बड़ा शहर बन गया जनाब, जो वो आज भी आज तक तारीख में उसका फिर जिक्र है और आप सुनते चले आ रहे हैं। तो अब ये जहन में रखिए कि कोई एक नस्ल ऐसी नहीं है कि जो यहाँ मुस्तकिल पहले से रहती हो, ये सब बाहर के। नतीजे के तौर पे सब ने अपने अपने हिसार बनाए हैं, बिरादरी सिस्टम है, कबीला सिस्टम है, ये मोहल्ला मेरा, वो मोहल्ला उसका, वो मोहल्ला उसका, वो मोहल्ला उसका, अपनी अपनी कॉलोनी, अपनी अपनी सोसाइटी सब ने बनाई हुई है, सब एक, लड़ाई झगड़ा नहीं है भाई। मगर ये क्या आसानी है भैया हमारी बिरादरी के लोग यहाँ। इसका नुकसान कब होता था, जब हाकिम वक्त से या किसी और वजह से किसी से झगड़ा होता था तो पूरी बिरादरी फिर अपने आदमी को छुड़ाने के लिए आ जाती थी, हमारे आदमी को छोड़ो। ये अच्छी बात भी थी कभी कभी, और कभी कभी ये बुरी बात भी थी। जनाब हानी इब्ने उरवा शहीद, जनाब मुस्लिम को जिन्होंने पनाह दी थी, याद है ना, उनका पूरा कबीला आ गया था बनी हज़रत का और घिराव कर लिया था दारुल अमारा का, उसने कहा हमारा कबीले का आदमी छोड़ो। इससे भी आसान मसाइब नहीं पड़ रहा, आसानी से समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, करबला में क्या हुआ, शहीद कर दिए गए जब सब, सबसे पहले हुर इब्ने यजीद रिहाई के कबीले के लोग आए, जब पामाली का हुक्म दिया ना इब्ने साथ देख पामाल करो तो सबके लाशें, वो कबीला आ गया, बस ये नहीं होगा, ये जिल्लत नहीं हम देख सकते, लड़ लिए तेरे कहने पर अपने आदमी से, अपने कबीले के आदमी से लड़ लिए, लेकिन हमारे सामने हमारे कबीले के आदमी का लाशा पामाल हो जाए ये हमें गवारा नहीं। इब्ने साद ने कहा अच्छा भाई ले जाओ उठा के हुर को। अब जब हुर को उठा के ले गए तो अब दूसरे कबीले के लोग आ गए, बनी असद के लोग जो फौज में थे। बनी असद मुराद कबीले से मुराद वो कबीला नहीं जो जंग में हिस्सा नहीं लिया, मुराद ये कि जो फौज में है। हबीब इब्न मज़ाहिर असदी इधर थे ना, तो बनी असद के जो लोग उस फौज में थे कूफे और शाम की, वो निकल के आ गए कि ये कैसे होगा भाई कि बनी असद के लोग तो अपना आदमी ले जाए, लाशा उठा के ले जाए, हमारा आदमी के लाशा बामाल हो जाए। ये हुआ था वहाँ। अब समझ में आ गई बात कि हर एक ने अपना अपना रिश्ता जताया, अपने कौम कबीले जगह लेते जाओ ले जाओ ले जाओ, आखिर में क्या बचा? कोई कहने वाला नहीं था मेरे रसूल का नवासा है। अब समझ में आ गई बात। ये कूफे का एक मैंने इशारा किया आपको कि ये मिजाज है, ठीक है। अब जाते हैं डिटेल में। बुलंद आवाज से एक सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अच्छा, अब वो जो मैंने पहले इशारा किया उधर से 1,000 इधर से 12,000 क्यों? जब मालदार हो गया मदीना, पहले माल नहीं था तो जज्बे जिहाद भी था, जब माल आ गया रिफाही जिंदगी यानी फलाही जिंदगी मिल गई, अच्छी जिंदगी मिल गई, खुशो खुर्रा में, तो अब क्यों लड़े भाई? अब लड़े बाकी मुसलमान, हम तो बहुत लड़ लिया, हमने बहुत जिहाद कर लिया। नतीजा ये हुआ कि उनका जज्बे जिहाद कम हो गया, घट गया, खत्म हो गया। तो 1,000 आदमी निकले थे मौला के लश्कर के लिए मदीने से, और पहले सारा लश्कर ही मदीने का होता था। क्यों? मालदार हो गए ना, घर बड़े बड़े बन गए, माले गनीमत इतना मिला है, वसाइल बहुत हो गए, लोग ला ला के वहां पे पैसे जमा कराते हैं बैतुल माल में, और बैतुल माल से फिर कैसे खर्च होता था वो आप जानते हैं, जिस अंदाज में खर्च होता था। वो तो मौला के जमाने के 4.5 साल है ना, कि जिसके माले गनीमत ही तो वापस खींचा था। मौला ने फरमाया था कि अगर इस बैतुल माल से, मुसलमानों के माल से किसी औरत के मेहर में कोई बुंदा भी दिया गया है ना, जब तक वो बुंदा वापस बैतुल माल में नहीं ले आऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। तो ऐसा हाकिम किसको पसंद है भाई? ऐसा हाकिम पसंद है? ऐसा मौलवी पसंद नहीं जो सख्त बात कर दे, तो ऐसा हाकिम कहाँ से पसंद आएगा? इतनी सी बात है, सीधी सीधी सी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। कहते ना कि सही बात करने के लिए तो हिम्मत चाहिए, हिम्मत नहीं तो बात कहाँ से करेगा? हिम्मत चाहिए। लोगों की लान थान मलामत सब के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए उसको, कि क्या क्या कहेंगे लोग। कहते रहो भाई, क्या कुछ नहीं करेंगे, लेकिन खैर अभी बताते हैं। चलिए आगे। 17 हिजरी में बुनियाद पड़ गई, शहर की शहर बन गया। लेकिन जनाब मुख्तार 13 हिजरी में यहाँ आ चुके थे, 14 हिजरी में माजरत के साथ। कब? कूफे में नहीं, हीरा में। इनके चचा साथ इब्ने मसूद सक़फ़ी ने यहाँ रिहाइश अख्तियार कर ली थी हीरा में, तो ये हीरा में थे। बाद में वो कूफे का मोहल्ला बन गया। अब साद इब्ने मसूद सक़फ़ी को जब मदाइन का गवर्नर बनाया गया, तो जनाब मुख्तार भी साथ साथ अपने चचा के साथ, क्योंकि वाली तो शहीद हो चुके हैं ना, वाली शहीद हो चुके थे। तारीखों ने यह लिखा कि 16 हिजरी में गवर्नर बनाया गया है जनाबे साद इब्ने मसूद सक़फ़ी को। उसे कहते हैं कि अबू उबैदा सक़फ़ी की खिदमात के सिलसिले में अमीर मुख्तार को यह मनसब दिया गया था। अब देखिए खुद फंस गए कि नहीं फंस गए। अगर 9 हिजरी की पैदाइश है जनाबे मुख्तार, तो मुझे बताइए 7 साल के बच्चे को कौन गवर्नर ही देगा भाई? कोई मिसाल है भाई? मासूमों की बात अलग है, यहाँ तो वहाँ मासूमों का तो तसव्वुर ही ना, जो जो गवर्नर ही दे रहा है ना वो मासूम, ना जिसको दी जा रही है ना वो मासूम है कि नहीं है ऐसा? तो 7 साल के बच्चे को कौन गवर्नर ही देता है? यकीनन 16-17 साल के हैं जब ही दी जा रही है ना, इसीलिए ये मसला पेश आया कि कमसिन है, यानी 16-17 साल के हैं, टीन एजर हैं, लिहाजा क्या किया जाए? इनके चचा को दे दी जाए। जनाब मुख्तार ने भी कहा कि भाई मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरे चचा को मनसब दे दो। जनाब साद इब्ने मसूद सक़फ़ी को मदाइन का वाली या गवर्नर, जो भी कह लीजिए, वाली कहते थे उस जमाने में, वाली बना लिया गया। कूफा आबाद होना शुरू हो गया। मौला का जमाना आया। अब जब मौला का जमाना आया तो मक्के से एक आंधी उठी, बसरे की तरफ चली। हालांकि मौला चाहते थे और निकल चुके थे मदीने से, कहाँ के लिए कस्द किया था? शाम का जाना था शाम, लेकिन बीच में ऐसी सियासत खेली गई कि पहले इधर आगे कर दो। वो मामला जो भी था, वो जनाब यूशा बिन नून का वाक़या पढ़ चुका हूँ पहले अशरे के, अगर याद हुआ आपके जहन में हो कि किस तरह जनाब यूशा बिन नून वसी थे ना, जनाब हारून का तो इंतकाल हो गया था, जनाब मूसा की हयात में ही उनके वसी कौन बने थे बाद में? जनाब यूशा बिन नून, और जनाब मूसा ने खुद बनाया था। उनके वसी के साथ क्या हुआ था? बनी इसराइल के 2 मुनाफिकों ने जनाब सफरा बिनते شعیب رسول کی بیٹی، رسول کی زوجہ، بیٹی بھی رسول کی ہے، جناب شعیب کی بیٹی ہیں اور جناب موسیٰ کی زوجہ ہیں، لشکر کشی کی تھی، جناب یوشع بن نون سے لڑی تھی، وہ تفسیر واقعے میں پڑھ چکا، وقت گزر جائے گا ریپیٹ کروں گا اس واقعے کو، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مولا لشکر لے کر چلے، معلوم ہے یہ مسئلہ ہو گیا، بصرے کی طرف رخ موڑ دیا، بصرے جب جا رہے تو اب مدد منگوائی، جناب محمد ابن ابی بکر اور جناب میثم تمار، ان دونوں کو بھیجا کوفے جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ اور وہاں سے مدد لے کر آؤ، فوجی مدد لے کر آؤ۔ یہ دونوں گئے تو کوفے میں ایک مقدس بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری، اس کا علمی روب، اس کا تقدس، بڑا مقدس مآب ہے یہ شخص، وہاں لوگ ہاتھ چومتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، حلال حرام سب، یہ جو کہہ دے وہ حلال، جو کہہ دے وہ حرام، ایسا مقدس آدمی، جو یہ فتویٰ دے دے گا اس پر ہی عمل ہوگا۔ اب جب جناب محمد ابن ابی بکر ابھی سمے تمار پہنچے مسجد جامعہ میں، سب کو جمع کیا کہ بھائی مولا علی کے نمائندے بن کر آئے، تو لوگ تو پہلی تشویش میں تھے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، آپس میں لڑائی ہونے جا رہی ہے، اوپر سے ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ بھائی آپ کی کیا رہا، ابو موسیٰ اشعری نے اپنے مقام کو استعمال کرتے ہوئے کہ نہیں 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 تو جائز نہیں ہے، مسلمان کا خون مسلمان کے لیے مباح نہیں ہے، بات تو صحیح تھی نا، لیکن کس موقع کے لیے یہ بات ہے، وہ کس موقع پہ استعمال کر رہا ہے، وہ مولا نے مدد منگائی ہے بھائی، امام مدد مانگ رہا ہے، امام نے فوج بلائی ہے، اس نے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا کہ نہیں یہ جائز نہیں، اس لڑائی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، کوئی نہ جانا اس لڑائی میں، ناکام ہو گئے، پیغام بھیجا مولا کو، مولا یہاں اس نے مصیبت مچائی ہے، مولا نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو بھیجا تم جاؤ، وہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اب تیسری بار امام نے اپنے، یعنی یوں کہیے کہ نواس رسول فاطمہ کے لال حسن مجتبہ کو بھیجا صلوات بھیجا، آپ کی خاموشی اچھی لگتی ہے مگر اتنی بھی اچھی نہیں لگتی کہ معصوم کے نام پہ تو سلوات بھیجا کیجیے، اب میں کیا کروں گے یار، میں کیا کروں، مجھے مجبور ہے، وہی ہے یہ مضمون مجھے دیا گیا ہے، بتایا گیا کہ یہ پڑھے آپ، زبردستی میں سے کہا گیا کہ یہ پڑھے، اب یہ تو ایسے ہی ہے بھائی، اب اس میں مرچ مسالہ کہاں سے لگاؤں، نہیں لگا سکتا نا، تاریخ پڑھنی ہے آپ کے سامنے، ایک بار اور بلند آواز سے ایک سلوات عنایت فرمائیے، اب جب یہ شہزادہ پہنچا تو بہرحال ایک تو نام کا تو اثر نا، پورا کوفہ جانتا ہے کہ بھائی فرزند رسول آ رہے ہیں، لہٰذا ذہنی طور پہ تیار ہو گئے، پھر امام نے جب جا کے خطبہ دیا، 12,000، یہ وہ 12,000 جن کا ذکر کر رہا ہوں، 12,000 مجاہد مولا کی مدد کے لیے تیار کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا بیٹا حسن مجتبیٰ ہے، انہوں نے تیار کیا 12,000 کو، اور یہ لشکر چل پڑا، یہاں سے بھانڈا پھوٹ گیا اس کے تقدس کا۔ ابو موسیٰ اشعری کے دل میں بات تو رہ گئی نا، بات تو رہ گئی نا کہ میرے سارے تقدس کا بھانڈا پھوٹ گیا، لہذا اس نے بدلا، اور کینا کہاں نکالا، وہ حکمیت، صفین میں جو حکمیت کا فیصلہ ہوا، اگر وہ غلط فیصلہ نہ کرتا تو آج مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا، اس نے بدلا لیا، ایک آدمی کا غلط فتویٰ کیا کرتا ہے، قوموں کو نہ معلوم کہاں تک پہنچا کے چلا جاتا ہے، پہلے دیکھ تو لیا کرو فتویٰ دینے والے کا علمی قد کیا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے مطلب کا مولوی ڈھونڈو گے کہ ہمارے مطلب کا فتویٰ کون دے گا جس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ مجھے بھی ایک صاحب نے کتاب دے کے دیکھی فتویٰ، یہ بھی مجتہد بھائی ہے کون مجتہد، میں خود پریشان ہو گیا، 14 سال تو میں وہاں رہا ہوں، اس کو نہیں جانا میں نے، پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے نکال لیا ایک مجتہد، اتنا فتویٰ دیا ہے، ہم تو اس کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں، تو اس ایک فتوے نے کیا کیا، فتنے میں ڈال دیا نا لوگوں کو، آگے مارکیٹنگ کرنے والے تو بہت ہیں نا، یا مارکیٹنگ کرنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ان کی دکانیں چل رہی ہیں، تو دیکھا تو کرو کہ جو فتویٰ دینے والا ہے وہ واقعی فقیہ صرف ہونا شرط تو نہیں ہے نا، فقیہ کے ساتھ مجاہد ہونا بھی تو شرط ہے کہ نہیں ہے، حبیب ابن مظاہر کی صورت میں امام نے ایک معیار دیا کہ نہیں دیا، میزان دیا کہ نہیں دیا، فقیہ ہو تو یہ دیکھنا دین پہ وقت پڑتا ہے تو مجاہد بنتا ہے کہ نہیں بنتا، دین پر جب وقت پڑے مجاہد بھی بنے تو بھی سمجھ لو کہ فقیہ ہے، اور نہیں خالی دکان چلا رہا ہو، اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، مثال دے دی ہم نے آپ کے سامنے۔ تو 12,000 کا لشکر یہاں سے تیار ہوا، جنگ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، نتیجہ آپ کے سامنے، جیت گئے مولا، फतेहगढ़। अब फतह के बाद कूफे, क्योंकि कूफे वाले सबसे ज्यादा थे, बसरे वालों की मजम्मत की जो खुतबा पूरा नाजुल बलागा में मौजूद है, उनको कहा कि तुम औरत के लश्करियों, मजम्मत की उनकी, पूरा खुतबा है जिसमें बताया कि डूब जाएगा बसरा, इसके कुंकरों को डूबते हुए देख रहा हूँ मस्जिद के, मैं पूरा हाल बताया बसरे की मजम्मत में, पूरा खुतबा है नाजुल बलागा में। कूफे गए, अब क्योंकि जंग जीत के आ रहे हैं, कूफे के लोग शहीद भी हुए कुछ, जख्मी भी हुए कुछ, पूरा कूफा इस्तकबाल के लिए निकल आया। अब इस्तकबाल के लिए निकल आया, वापस जाने का वक्त नहीं है मौला के पास, मदीने थोड़ी जाएंगे, क्यों आगे सिफीन का मार का दरपेश है ना, आगे अब उसे शाम वाले से लड़ना है, और अभी वहां से फैसले नहीं हुआ था कि जनाब नहरवान के खवारिज जो कूफे के थोड़े से फासले पर है नहरवान, उन्होंने सर उठा लिया। नतीजा ये हुआ कि मौला ने इसी कूफे को कैपिटल बना दिया, पाए तख्त बना दिया कि मैं यहीं बैठूंगा, यानी वापस मदीने नहीं गए, इसी को अपना दारुल खिलाफा बना दिया। पहले नहीं था, मैंने बताया कि देखिए पहले क्या था, एक ऐसी मैदान जैसे आपका इस्लामाबाद, कुछ भी नहीं था सन 58 से पहले, लेकिन आबादी तो थी ना छोटी छोटी, वो नूराबा नूरपुर और फला 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 छोटे छोटे ऊपर पीर सुहावा वो था, उस भी था जब इस्लामाबाद नहीं था, तो छोटे छोटे गाँव थे, लेकिन अब इस्लामाबाद बन गया तो जनाब 2.5-3 मिलियन का एक शहर आज आपके सामने खड़ा हुआ है। लिहाजा वो कूफा भी है तो कुछ भी नहीं था, बनते 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 क्या हुआ, मौला का दारुल खिलाफा बन गया। दूसरा सबब क्या था, एक सबब तो ये जाहिरी जंग है, दूसरा सबब ये था कि यही सारे झगड़े थे, मौला जानते थे कि इनको कंट्रोल में रखा तो सब कंट्रोल में रहेंगे, यहां से जाऊंगा ये फिर बड़ा गंदा होंगे, ये फिर मुंतशिर होंगे, फिर ये जहनी इंतशार का शिकार हो जाएंगे, मुख्तलिफ नजरियात इन पर हमला आवर, क्यों सबकी मशीनरी काम कर रही है, शाम के जासूस यहां, हजरत इब्ने जुबैर के जासूस यहां, रूमियों के जासूस यहां, कैपिटल है ना, फौजी छावनी है, सारी कुव्वत जो है वो यहां पर है, सारी ताकत का मरकज है बलाद इस्लामी की उस जमाने में, उस वक्त। लिहाजा जितनी भी साजिश है वो मौला की कुव्वत का मरकज है, लिहाजा जितनी भी साजिश है वो यही, जितने भी एजेंट हैं वो यहीं, जितने भी एलिमेंट हैं वो यहीं, उन सब का काम ये कि इनको मुंतशिर करके रखो, इनको लड़ा के रखो, किसी को किसी नाम पे, किसी को किसी नाम पे, और एक बीमारी इनमें डाल दो, एक बीमारी इनमें, एक मरज इनमें एक डाल दो कि हर एक को एजेंट बनाने हम शुरू कर दो, ये उसको एजेंट कहे, वो उसको एजेंट कहे, वो उसको एजेंट कहे, किसी को पता नहीं चले वो पूरी कौमी एजेंट है क्या, ये कैसे शुरू हुआ बताते हैं आपको, एक सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, तवज्जो है ना, अभी 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी नींद के मजे लेना चाहते हैं नींद के मजे ले ले, मैं नहीं टोकूंगा उसको बिल्कुल भी, एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, अब देखिए मैं आपको बताता हूं मजलूमियत किसे कहते हैं, अगर ये मजलूमियत के मीनार निशानियां आयात शायर जो कह लीजिए ना होते ना, तो ना मालूम क्या होता, हम जैसे हकीर मिस्कीन तालिब इल्मों का हश्र ना मालूम क्या हो चुका होता, अगर ये इल्म के मीनारे हिदायत के मीनारे हमारे सामने ना होते। उलमा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपने जैसे हकीर तालिब इल्म की मिसाल दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ फिर उलमा का जिगर कितना है, फुकाहा का जिगर कितना होगा, और अब समझ में आता है कि आइम्मा ताहिरी ने कैसे लोगों के दरमियान कैसे सब्र किया है। सुनिए जो वाकया पढ़ने जा रहा हूँ तारीख में है, आपने इधर उधर सुना भी होगा कभी कभी, लेकिन आम तौर पे बयान नहीं किया जाता, क्यों बयान नहीं किया जाता जानते हैं आप, इसलिए बयान नहीं किया जाता कि वो नाम निहाद खुद साख्ता अकायद गढ़ने वाले लोग उसे कबूल नहीं करते, वो जो खुद साख्ता और परदाख्ता अकीदा है ना जो खुद बनाते हैं बैठ के, उस अकीदे के मयार पे जो वाकया पूरा नहीं उतरता कहते नहीं गलत है ये नहीं हो सकता, बस ये कह दिया उन्हीं ने, आपने उसे ज्यादा बात की तो गालम गलौच पे उतर आएंगे, और ज्यादा बात करेंगे तो 10 बदमाश साथ हैं हाथापाई पे उतर आएंगे, ऐसे ही है ना, गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, अच्छा लगे या बुरा लगे, बात डंके की चोट पे कर रहा हूं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं तो हमेशा से मिजाज और अल्लाह से यही दुआ करता हूं परवरदिगार इससे भी ज्यादा हिम्मत दे, इससे भी ज्यादा बोलूं, मुझे कोई परवाह नहीं है ना, ऐसा साथ मुस्टंडे साथ लेके चलो 10, नहीं मानेगा मौलवी तो अभी इसको गालम गलौज करेंगे, इसकी बेइज्जती करेंगे, सड़क के ऊपर भी खुश होंगे जाके, आज तो ऐसी बेइज्जती की है इस मौलवी की हमने, इसकी सात नस्लें याद रखेंगी। उसकी बेइज्जती जो तुमने की, उसका सिला तो उसे अल्लाह देगा, उसका सिला तो अल्लाह देगा उसको, लेकिन तुम्हारे साथ, उसकी सात नस्लों के साथ जो होगा वो तो अल्लाह जानता है, तुम्हारे साथ जो होगा वो हम बता दें कि जिन्होंने ऐसा किया है ना, दुनिया में भी रुसवाई, उनके बच्चे इस दुनिया में उन्हें जलील और रुसवा कर देते हैं और आखिरत में भी रुसवाई उन लोगों के लिए। अब सुनो वाकया जो बताना चाहता हूं आपको, क्या है कूफा, कूफी मिजाज किसे कहते हैं। कूफा अब शहर नहीं रहा, कूफा एक मिजाज का नाम बन गया है, एक मिजाज है जिसका नाम है कूफा, उस मिजाज की बात कर रहा हूं। सुनो, शहजादे हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम मुकाबले के लिए निकले, हजारों का लश्कर साथ है, हरावल दस्ते के तौर पे अपने बेहतरीन जानिसार कैस इब्ने साद। ये कैस इब्ने साद दूसरे इमाम के साथ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मौला के साथ मालिक अश्तर, इतना वफादार और इतना जानिसार इमाम का सालार है ये। इसको आगे भेजा लश्कर देखे हरावल दस्ते के तौर पे मदाइन की तरफ। जब ये आगे बढ़े, मदाइन अभी पहुंचे नहीं, जब ये आगे बढ़े, मैंने कहा ना कि हर किस्म के लोग कूफे में घुसेड़े गए थे ना, सब कालम काम करें, मुनाफिकीन काम कर रहे हैं, कैश कराने वाले काम कर रहे हैं, झगड़ा हो कैसे कैश कराया जाए, जनाजा हो कैसे कैश कराया जाए, बुराई आएगी तो ये है ना दो चार मौलवी, इनको गालियां भी देंगे अपने मजमे में, अपने मजमे। ये मेरा जुमला याद रखिएगा, शेर कहाँ है, अपने मजमे में। बुरा भला कहने के लिए कहाँ तैयार है, अपने मजमे में, अपने लोगों की बेइज्जती करने के लिए तैयार हर वक्त, क्योंकि यहां कोई पकड़ने वाला नहीं है ना, यहां कौन रोकेगा, जिसकी जैसे चाहो बेइज्जती कर लो, अपना मजमा है ना, जो चाहे कर लो, अगर कुछ कहेगा तो कहेंगे अपनों को मार रहे हैं, वो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू। अभी बताता हूं क्या हुआ, ये जो कह रहा हूं ना मिसाल, अभी इसकी दिरायत रिवायत और दिरायत दोनों पेश करूंगा कि अगर उनको कुछ कह दिया गया तो साहब शहर में एक हंगामा, लो भाई बिक गए अपने लोगों को मार रहे हैं, बाजारी लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे बिक गए अपनी कीमत पता नहीं दो टके के हो तुम, और मुजाहिद लोगों का कहते हो बिक गए, जिनकी पूरी जिंदगी जिद्दोजहद में और इस खातिर गुजरी जाए कि तुमको इज्जत मिले, तुम इतने पस्त लोग हो गए हो कि उनको सड़कों में समझते हो, बेइज्जती कर लोगे, अगर इस तरह तुम्हारे करने से बेइज्जतियां होती तो कायनात में यही चीज जो मैंने इशारा किया ना, सब्र क्या चीज देती है, कायनात में जो सलूक आले रसूल के साथ किया गया, खुदा की कसम किसी के साथ किया गया, किसी के हरम के साथ किया गया, लेकिन अल्लाह ने उसी एहानत को इज्जत से बदल दिया, बदला कि नहीं बदला, ये भूल जाओ कि बाजारी लोग जमा होंगे और जमा होने के बाद शोर करेंगे और किसी की इज्जत पामाल कर देंगे, ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है इज्जत और जिल्लत का मामला, तो इज्ज मन तशा व तो जिल्ल मन तशा, याद रखो सब बच्चों को दस दे रहा खैर जनाब, तो ये क्यों तमहीद बांधी, अब सुनिए ना, यही लोग, इस किस्म के लोग, ये मिजाज तो हमेशा से है ना, काबिल से चल रहा है ना, सड़कें बिल्डिंगें बदलती हैं, मिजाज नहीं बदलने करते, मिजाज वही होते हैं, इंसान है उसी मिजाज पे चल रहा है, दो मिजाजों पे चल रहा है, हाबीली काबिली, मूसवी फिरौनी, इब्राहिमी नमरूदी, हुसैनी यजीदी, यही है ना, यही दो है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई, ये सीधी सीधी सी बात है। अब आइए क्या हुआ आगे, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया इमाम हसन के लश्कर में, बिक गया बिक गया बिक गया, जैसे यहां होता ना सड़क पे खड़े होकर, बिक गया, बेच दिया, कौम का सौदा कर दिया, तुम हो कितने के जो सड़क पे उछल रहे हो दो दो फीट ऊंचा, اپنی قیمت تو پہلے لگاؤ کہ تم کتنے کے ہو. چند ہزار مل جائے تو کیس چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو کیا؟ ہمارا کام ہو گیا بس, اب آپ جائیے, اب ہمارا کام ہو گیا, ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, آپ جائیے. ہمارا معاملہ طے ہو گیا آپس میں. جب تک معاملہ طے نہیں ہوا تھا تو قوم کہاں ہے, یہ کہاں ہے, فلانے کہاں ہے, فلانے کہاں ہے. معاملہ طے ہو گیا, اب دوسروں کے بچوں پہ بات آئی تو اب کہاں ہو تم, تم قوم کے حصے نہیں ہو, اب تم کہاں ہو. بڑے بڑے مسئلے ہیں. مجھے حقیر سے سن سکتے ہیں آپ, اللہ نے اتنی ہمت دی ہے مجھے, الحمدللہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اپنے مالک کا, معبود کا, اور ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں معبود اسی طرح دنیا سے اٹھانا, اسی طرح اٹھانا, اس سے زیادہ ہمت دے کے اٹھانا مجھے اس دنیا سے. پروپیگنڈا شروع کر دیا, بک گیا. کون بک گیا؟ سعد ابن قیس, وہ بدبخت جو خود بکے ہوئے تھے, پیسے لے کر آئے تھے اندر. اشس بن قیس نے مال دیا تھا, میرے شام نے مال دیا تھا, ان سب نے مال دیا تھا, گھس جاؤ اندر. بعض اوقات کچھ لوگ خود کچھ نہیں کر سکتے نا, جب تو اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں. کیش کرا لو جلوس کو, ریلی کو, کیش کرا لو, آج موقع اچھا ہے. ان کے کندھے میں رکھ کے بندوق دنیا کو بے وقوف بنا سکتے ہو, علی کے غلاموں کو نہیں. اپنے اوپر لے جائیں گے ساری بات, ہمیں ذلیل کر لو گے نا, کر لو, لیکن کوئی اپنے مقصد کے لیے ہماری عزاداری کو کیش کرا لے, یہ ہمارے جیتے جی تو نہیں ہو سکتا, یہ ہمارے جیتے جی نہیں ہو سکتا. اور یہ آج نہیں کہہ رہا ہوں, یہی مجمع میں لوگ بیٹھے ہوں گے برسوں سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ عزاداری اپنے زور بازو پہ کی ہے, کسی سے بھیک میں نہیں لی ہے. آج بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہم نہیں ہوں گے, جب بھی ہوگی قیامت تک ہوگی, کسی میں نہ پہلے دم تھا, نہ آج ہے, نہ آئندہ کبھی ہوگا. اور مجھ میں بھی دم نہیں, آپ میں بھی دم نہیں ہے. زور بازو کی جو میں نے بات کی ہے نا, یہ زور بازو حسینیت کا زور ہے, کسی حسن ظفر کا یا فلانے فلونے کا نہ سمجھیے گا. یہ تو خود اپنے آپ کو منواتی ہے نا, یہ عزاداری کی طاقت ہے بھائی, اپنی طاقت ہے, اپنی قوت ہے, مت گھبراؤ. پروپیگنڈا شروع, بک گئے, بک گئے. کس کو کہہ رہے ہیں بک گیا؟ سعد ابن قیس کو, امام کے وفادار ترین, جانصار ترین اصحاب میں سے ایک. اور وہ بک گیا, اس نے پیسے لے لیے, لشکر تو دور ہے نا, موبائل تھوڑی چل رہا ہے. اور موبائل بھی چل رہے تھے, ہوتے تو کیا فرق پڑتا تھا, آج بھی تو موبائل ہی چلتے ہیں نا, اس وقت موبائل پہ یہی کام ہو رہا ہوتا جو آج ہوتا ہے. ایک اعلان چلا, کس کی طرف سے یہ نہیں معلوم. مثلا رضویہ کا نام لے دیتا ہوں تاکہ کوئی برا نہ مانے, رضویہ میں جمع ہو جانا صاحب شام کو 4 بجے, جو سیدہ کا ماننے والا ہے آئے گا. اب ڈر گیا بندہ کہ بابا نہیں گیا تو مذہب سے خارج ہو جاؤں گا, چلے چلو. ہر واجب ہے ہر مولا کے غلام پہ پہنچ جانا 4 بجے. کون بلا رہا ہے نہیں معلوم, کس نے بلایا نہیں معلوم. اب پوچھتے ہم پھر, بھائی کس نے کال دیے, کس نے بلایا, کیا ہوا, کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایک فتنہ ایجاد کرنا ہے, فتنہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے فتنہ ایجاد کرو. کال چل رہی ہے, ٹکا ٹک میسج چل رہی ہے, ٹکا ٹک 4 بجے. اور جو نہیں آئے گا وہ غداری کرے گا, مذہب کا غدار ہوگا, جو امام حسین کا ماننے والا ہے, جو ماں سا, اور بھی کچھ لفظ ہوتے ہیں جو میں ممبر سے نہیں لے سکتا, وہ حلالی ولالی بھی آ جاتا ہے, ہوگا تو آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا. اب سب پہنچے جا رہے ہیں بےچارے. اب مجھے پڑھنے والوں میسجوں کے اس قسم کے تو بتا دو, یہ جو بھیج رہا ہے یہ کہ قرآن کی آیت بھیج رہا ہے جس سے ڈر رہے ہو؟ یہ اللہ کا قول ہے, یہ رسول کا قول ہے, یہ امام کا, کس کا قول ہے کہ اس کے کہنے سے یہ ہو جائے گا؟ تم سیدہ کے ماننے والے یا نہ ماننے والے ہو جاؤ گے, کیا سے, کہاں سے, کسے, کون بھیج رہا ہے بھائی, کون ہے یہ, معصوم ہے, یہ وہی آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, غلط ہے نا. بس تو پروپیگنڈا ہر زمانے میں پروپیگنڈا ہو گیا. ادھر لوگوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اچھا وہ تو بک گیا, اور ادھر قیس بن سعد کے لشکر میں کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے امام کے خلاف, کہاں ہیں وہ لوگ تھے کوفے کے امام کے ساتھ, امام ان کے درمیان میں تھا, ہمارے درمیان نہیں ہے امام. اس لیے ہم بہت جو چاہیں کہہ لیں, دعوے کر لیں, اللہ اسے امتحان میں نہ ڈالے کبھی, اور ڈالے تو سب کے لیے دعا کر رہا ہوں پروردگار سب کو سرخرو رکھے, بھائی امام ہے نا ان کے درمیان میں ہے نا, اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع, امام کے خلاف قوم, اپنے لشکر کے لوگ. وہ تو صلح کر لی, ابھی ہوا کچھ بھی نہیں ہے. قیس ابن سعد کے لشکر کو منتشر کیا یہ کہہ کر کہ تم ہمیں جنگ کی بات کرے, وہ تو صلح ہو گئی. مال لیے ہوئے لوگ تھے نا لشکر میں, تتر بتر ہو گیا لشکر, آپس میں تلواریں چلنے کی نوبت آ گئی, ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں شروع. انتظامیہ مطمئن ہو گئی, چلو اب آپس میں ہی لڑیں گے, جان چھٹی ہماری. آج کی زبان میں کہہ دیا نا جملہ, سمجھ میں آ گیا. بھائی یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں بھڑے رہیں, لڑے رہیں, ایک دوسرے کے گریبان کھینچتے رہیں, ایک دوسرے پٹائی کرتے رہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں, بس ٹھیک ہے ان کی جان چھٹی ہو آرام سے. اب کیا ہوا, امیر شام مطمئن مطمئن ہو گیا نا, جب تلوار, کیسی تلوار چلی, امام کے خیمے پہ حملہ کر دیا. وہ جو میں نے کہا جس واقعے سے بھاگتے ہیں وہ یہ واقعہ ہے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کیسے نہیں ہوا, ہوا ہے, تم ثابت کرو کہ نہیں ہوا. تاریخی حقیقت ہے, دغا کی ہے امام کے ساتھ. حسین کے ساتھ دغا کر سکتے ہیں, حسن کے ساتھ نہیں. حسین پر تلوار چلانے والوں میں کتنے نام ہیں, محمد ابن اشد سمیت, حجاج ابن عمرو سمیت, جن کے نام لینے کے حسین نے بتایا تھا کہ تم نے تو مجھے خط لکھے تھے. تو جب حسین کو قتل کر سکتے ہیں تو حسن کے خیمے پہ حملہ نہیں کر سکتے. کہاں ہو, کون سی دنیا میں ہو, حملہ کر دیا خیمے پہ, زانو کے نیچے سے مسلح کھینچ دیا, نیزے کا وار کیا, امام کی ران میں نیزہ لگا, زخم لگا. اور جناب سید الشہداء کی حالت یہ ہے, حسین ابن علی, عباس ابن علی, محمد حنفیہ, حسن کے بھائی, چند جانسار ہٹا رہے ہیں لوگوں کو, حملہ کر رہے ہیں. اب مجبوری بتاؤں کیا ہوئی, اب میری سمجھ میں آیا کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے آج کے دور میں. وہی بات, کس کو مارے حسین, کس کو مارے عباس, کس کو مارے محمد حنفیہ, بس دھکیل رہے کہ ہٹو پیچھے. اور کسی طرح حسن کو ان کے نرغے سے نکالا, کیوں, جانتے ہیں حسین کہ جن کو مارا تو باہر جا کے روئیں گے, اپنوں کو مار رہے ہیں. یہ ہے کوفی مزاج, کہاں جائے. مولا علی تو کہتے تھے کہاں جائے وہ شخص جس کو تم جیسے لوگ ملو گے, تم کسی چیز میں راضی نہیں, یہ کرو تو مصیبت, نہ کرو تو مصیبت. ابھی بتاتا ہوں کہاں کہاں مولا نے زخمی کر دیا امام کو, جس کے لشکر میں شامیوں نے نہیں کیا ابھی, اس لیے نہیں بتاتا پڑھنے والا کہ اس کو پڑھنے کے لیے جگر چاہیے اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانکنا پڑتا ہے انسان کو. تو پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکو, دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے. کیا کیا امام کے ساتھ اسی کے سپاہیوں نے, بڑی مشکل سے نکالا ہے, زخمی حالت میں مدائن لے کر گئے. کس کے گھر, سعد ابن مسعود ثقفی, جو کہ والی ہے ابھی شام والی کی طرف سے, بھی والی ہیں, وہی گورنر ہیں اور مختار وہی ہیں ان کے ساتھ. سعد ابن مسعود ثقفی نے نہ صرف علاج بلکہ احترام بلکہ وعدہ کیا, جب تک میرے خاندان کا, میرے قوم کا, قبیلے کا ایک فرد بھی زندہ ہے, فرزند رسول, ہم آپ کا دفاع کریں گے, آپ کی حفاظت کریں گے, اطمینان سے رہیے. اب یہ اس ایک واقعے میں نے آپ کو بہت چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے, بشرطی کہ آ گئی ہوں, کچھ کی آ گئی ہوں گی, کچھ کی نہیں سمجھ میں آئی ہوں گی. کیونکہ جس کی سمجھ میں نہیں آنی اس کو اللہ اور اس کا رسول, اللہ تو خیر مبان نہیں کہتا, رسول نہیں سمجھا سکا, امام نہیں سمجھا سکا, ہم جیسا کیا سمجھائے گا. اور یہی بات اللہ نے کہی بھی کہ حضور آپ مطمئن رہیے, یہ ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں, یہ سمجھنے والے نہیں ہیں, آپ اپنا کام کرتے رہیے. اتنا تو کہا ہے, فرمایا ہے نا اللہ نے اپنی کتاب میں, بنوا دیا نا ایسے لوگ, یعنی انہوں نے کہہ دیا بھائی طے ہے کہ ان کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, آپ اپنا کام کرتے رہیے, ان کو چھوڑیے. چلیے اب امیر مختار کا کام شروع ہوتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کوفہ کیسا ہے, وجہ کیا بنی, ایک وجہ اور بتا دیں پھر آتے ہیں میرے مختار پہ. گھڑی تیز آج کچھ تھوڑا سا نہیں چل رہی ہے, یہ صحیح ہے, بڑی جلدی اتنی ٹائم ہو گیا. ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد. خیر کوشش کرتے ہیں بیان کو وقت کے اندر سمیٹنے کی, لیکن مسائل ایسے ہیں کہ میں کیا کروں, کہاں جاؤں ان مسائل کو لے کے. پس صفین, نہروان, جبل, تینوں جنگوں میں سب سے زیادہ لوگ کہاں کے شہید ہوئے, کوفے کے نا, सबसे ज्यादा इन्हीं ने हिस्सा लिया, सबसे ज्यादा शहीद हुए। एक ये सब बना प्रोपेगेंडा का मरवाई दे रहे हैं। जबान अरबी होगी, अल्फाज वही है जो मैंने आपको बता दिए, मरवाए दे रहे हैं, इतने शहीद हो गए, उतने शहीद हो गए, उतने शहीद हो गए। अच्छा, और फिर उसके बाद ये तो कुछ सिला भी नहीं भाई, और जंगों में माल गनीमत मिलता था ना, मौला ने लूटने नहीं दिया सामान, ना जमल में, ना सिफीन में, ना नहरवान में, माल गनीमत भी नहीं मिला। वो घोड़े मिल जाते, कुछ तलवारें मिल जाती, कुछ तो कुछ आपको पूछते, मिला भी कुछ नहीं, मर भी गए। तो आप बताइए कैसा प्रोपेगेंडा हुआ होगा, कितना खतरनाक, इतना खतरनाक प्रोपेगेंडा कि अलंबार पे जब हमला किया है शाम के एक सालार ने, जानते हैं क्या किया उसने, कितने आराम से इनको लूटा है, लूटा शहर, घरों में घुस गए, इनके घरों में घुस के इनकी औरतों के गलों से हाथ गुलबंद, हाथों से चूड़ियां, कानों से बुंदे निकाल के ले गए। ये नहीं लड़े, मौला पुकारते रहे, चिल्लाते रहे, मुकाबला करो। और इसी मौके के लिए मौला ने कहा था कि अगर मुकाबला नहीं करोगे तो जलील हो गई, रुस्वा हो गई वो कौम जिसको उसके दुश्मन ने घर में घुस के मारा। ये मौला का फरमान है, किसी मौलवी का नहीं है। जलील हो गई, रुस्वा हो गई वो कौम जिसको दुश्मन ने घर में घुस के मारा, अलंबार वालों के लिए कहा था। तुम्हारे घरों में घुस गए, तुम्हारी औरतों के गलों से हार खींच लिए, हाथों से चूड़ियां उतार दी, तुम फिर भी नहीं लड़े। इधर ये हुआ, उधर मिस्र में कयामत बरपा है। मिस्र का वाली किसे बनाया मौला ने, मोहम्मद इब्ने अबी बकर को, अपने बेटे को। मोहम्मद इब्ने अबी बकर को क्या कहा है मौला ने, अपना बेटा कहा है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसे जलील कद्र सहाबी को हटाकर मिस्र का वाली बनाया मोहम्मद इब्ने अबी बकर को। और वहां वो इब्ने आस की साजिश शुरू, थैलियों के मुंह खुल गए, लालची दी जा रही है कि भाई वैसे भी अब जा रहा है सब मिस्र, हमारा साथ दो, मिस्र कब्जे में आएगा, तुम फला कस्बे के एडमिनिस्ट्रेटर, तुम फला शहर के कमिश्नर, तुम फला शहर के नाजिम। सीटें बढ़ती है ना, 5,000 से वादा कर लेते हो कि तुझे नाजिम बनाएंगे, तुझे नायब नाजिम बनाएंगे, तुझे ये देंगे, तुझे एमपी करेंगे। अब सीटें कुल है 500, तो बंदा पार्टी छोड़ के भागेगा कि नहीं भागेगा। अब आज के दौर में तो समझ में आ गई ना बात, ये 5,000 से वादा कर लिया, इलेक्शन में सीटें हो गई महदूद, तो भागेंगे ना लोग पार्टियां छोड़ छोड़ के। तो ये आज की कहानी थोड़ी, हमेशा से ऐसे होता चला आया है। जैसा वादे वही शुरू हो गए, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें वो देंगे, लोग खुश के मनसब मिलेगा, ओहदा मिलेगा। जिन्हें अब मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने मनसब नहीं दिया, ओहदा नहीं दिया, वो सब के सब बिके के नहीं बिके, चंद थे जो नहीं बिके। अब वो हमले शुरू हो गए, हमलों पर हमले, और कमजोर पड़ गए मोहम्मद इब्ने अबी बकर, हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर कमजोर पड़ गए। मौला का खत लिखा, मौला मुझे मदद चाहिए, फौज की मदद चाहिए, ये मैं अकेला संभाल नहीं पा रहा, मेरे पास जो कुवत है मैं उससे इतनी बड़ी ताकत से लड़ नहीं सकता। मौला ने खुतबा दिया जामे मस्जिद में, यानी कूफे मस्जिद, कूफा उसको जा मस्जिद जामिया भी कहा जाता है। वो हजारों लोग जमा हो गए कूफे में, खुतबा दिया इमाम, बताया कि ये हाल है, जमा हो जाओ लड़ने के लिए। सब आहिस्ता आहिस्ता करके खिसकने शुरू हो गए, खिसक गए, छोड़ गए। हजर इब्ने अदी और कुछ चंद लोग वो मौला के साथ रह गए। मौला बाहर निकले, इनाज बलागा में सब मिल जाएगा, मैं तफसील नहीं पढ़ रहा कि आप सुन भी नहीं सकते। बाहर निकले हैं और मस्जिद कूफा से पुष्ट लगा के खड़े हो गए। जानते हैं एक थके हुए इंसान की तरह, जो सांस लेने के लिए टेक लगाता है ना दीवार से, ये कैफियत है मेरे मौला की। मासूम की शान में गुफ्तगू करते हुए जाहिर के अल्फाज को बड़ी एहतियात से चुनना पड़ता है। बाज़ अल्फाज रिवायतों में लिखे होते हैं लेकिन पढ़ने के लिए, मिंबर से पढ़ने के लिए नहीं होते, इसलिए मैंने बड़ी एहतियात से लफ्ज़ का इंतखाब किया। एक ऐसे शख्स की तरह जो बहुत थक नहीं जाता, सहारा लेता है, ये कैफियत है मौला के, ऐसे टेक लगा के पुश्त लगा के खड़े हो गए। हालांकि अभी खुतबा दे के तो निकले, लेकिन लोगों ने उनके सामने मासूम है, इमाम है, आप आज के दौर की बात कर रहे हैं, इमाम का साथ नहीं दिया। जानते क्या जुमले अदा किए मौला ने, वाए हो उस शख्स पर, हैफ हो उस शख्स पर जिसे तुम जैसे लोग मिले। किन से कह रहे मौला, कूफे के लोगों से जो साथ हैं, जिन्होंने बैत की, जो अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, जो इमाम मानते हैं, वाए हो उस पर जिसे तुम जैसे लोग मिले उसका कोई चारा नहीं, जिसके हामी तुम जैसे हो। काश मेरे बस में होता, अपने 10 देके उसका 1 ले लेता। मैं तुम्हारा इमाम बरह हूं, मेरा साथ नहीं देते हो, फिर किसका साथ दोगे तुम? तो अली का साथ लोगों ने नहीं दिया। उस जमाने में जब अली हैं, सामने हैं, लोग देख रहे हैं ये आपके नूरानी वजूद को, अपनी आंखों से देख रहे हैं, साथ रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, नहीं दिया अली का साथ। नतीजा क्या हुआ? मोहम्मद इब्न अबी बकर ने दूसरा खत भेजा, मौला लश्कर भेजे कुछ। अब मौला ने मालिक इब्न अश्तर को भेजा और ये खत देकर भेजा, मोहम्मद इब्न अबी बकर को अलग खत लिखा कि मोहम्मद मैं तुम्हारी मजबूरी को समझता हूँ, तुम ये मिस्र मालिक अश्तर के हवाले करके वापस आ जाओ, लेकिन ये ना समझना कि मैंने तुम्हें ना अहल पाया। नहीं, तुम मेरे बेटे हो, तुम ना अहल नहीं हो, मैं तुमसे कुछ और काम लूँगा, ये ना समझे, ताकि दिल भी ना टूटे कि तुमसे विलायत में इसलिए वापस नहीं जाओ, लेकिन जिस मिजाज के वो लोग हैं उसके लिए मालिक अश्तर चाहिए, तुम वापस आ जाओ। अलग अलग होता है ना मिजाज, तो मालिक अश्तर का नाम सुन के मिस्र वाले वैसे ही डर गए थे कि अब मालिक आ रहा है, होशियार अब सीधे हो जाओ, और वो भी डर गए थे शाम वाले के मालिक अश्तर को भेज दिया। लेकिन मालिक अश्तर पहुंच पाए मिस्र, किसने जहर दिया उनको, किसने मारा है? जिसके यहां पनाह ली थी, जिसके यहां ठहरे थे जनाबे मालिक, क्या किसी शामी के यहां ठहरे थे? क्या किसी बनी उमैया के फर्द के यहां ठहरे थे? वहीं तो ठहरेंगे ना जहां अपना होगा। लेकिन चंद दिरहमों के अवस अली का बाजू काट दिया गया। ये मेरे मौला ने खुद फरमाया, जब मालिक की शहादत की खबर सुनी तो मौला फरमाते हैं कि इसने मेरा एक बाजू सिफीन में काटा था, इशारा किधर है जनाबे अम्मारे यासिर की तरफ, दूसरा बाजू आज काट। और मालिक की कत्ल की शहादत की जब खबर पहुंची ना मेरे शाम को, तो सब कुछ भूल गया कि मैं क्या हूँ, ज़ाहरी तौर पे खलीफा हूँ, खड़े होकर उसने रक्स किया था। आज मैंने ख़त्म कर दी कुव्वत अली की, और वही हुआ, मालिक वहाँ नहीं पहुँच पाए, शहीद कर दिए गए, जहर दे दिए गए। चंद दिरहमों के बस लोग, चंद दिरहमों के बस अल्लाह के रसूल को बेच देते हैं, जनाब यूसुफ को मिस्र के बाजार में ला के बेच देते हैं। यही इंसान है, इंसान और कोई मखलूक, यही सब कुछ करता है। मोहम्मद इब्न अबी बकर के साथ क्या किया किया गया? कत्ल करने के बाद गधे की खाल में सी के जला दिया गया, मोहम्मद इब्ने अबी बकर। अब आप ही तो सवाल किया कीजिए ना, पूछा कीजिए ना लोगों से कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर किसके साहबजादे हैं, किसके भाई हैं, पूछा कीजिए ना, किसके बेटे हैं, किसके भाई हैं, किसके साहबजादे, पूछा कीजिए लोगों से कि अगर नासजा कहना इतना जुर्म है तो सहाबी रसूल को कत्ल करना क्या है? क्योंकि मोहम्मद इब्न अबी बकर सहाबी रसूल भी तो है ना, भाई जब भी तो सहाबी हैं, क्योंकि मोहम्मद इब्न अबी बकर पैदा कब हुए? जब भी तो पैदा हुए ना, हुजूर के जमाने में, तो सहाबी भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं। यहां कोई नहीं बताता कि किस किस ने कैसे सोग मनाया था इनका, वक्त इजाजत नहीं देता, वरना तफसील बताता कि उम्मुल मोमिनीन ने कैसे सोग मनाया था अपने भाई का मोहम्मद इब्ने अबी बकर के कत्ल का, और कैसी मजम्मत की थी मेरे शान की कि तूने ये सलूक किया मेरे भाई के साथ, मोहम्मद इब्ने अबी बकर के साथ। ये अली का वो बेटा, ये वहाँ शहीद कर दिया गया। क्यों? यहाँ कूफे के लोगों ने अली के साथ दूसरों को जोड़ी है, अली के साथ बेवफाई की है, अली के साथ दगाबाजी की है। एक छोटा सा वाक़या सुना के मंजिल की तरफ आ जाते हैं। जब साद इब्ने मसूद सक़फ़ी के घर पे पढ़ा लिए तो अमीर मुख्तार परेशान हो गया, घबरा गया कि भाई ये कुछ भी सही, गवर्नर तो अमीर शाम का है ना, वाली उसकी तरफ से है, और अभी इमाम हसन की तरफ भी है ये, तो ऐसा ना हो कि अपने मनसब को बचाने के लिए मेरा चचा हसन को अमीर शाम के हवाले कर दे, ऐसा ना हो। ये भी तो हो सकता ना कि भाई अभी एक शहर की विलायत है, बसरे की भी मिल जाएगी। ये खौफ, ये डर अमीर मुख्तार को है कि ऐसा ना हो कि मेरा चचा, जमाना ऐसा है ना, देखना कैसे कैसे लोग गद्दारियां कर रहे हैं, गद्दारियां बेच रहे हैं अपने आप, डर रहे हैं ना जनाब अमीर मुख्तार। लिहाजा अपने चचा के दिल की बात मालूम करने के लिए चचा से अलग अकेले में बात करते कि चचा ये वैसे भी अब गया सब, शाम के पास गया ये सारा इलाका, कुछ बचता बचाता नहीं है, वैसे भी सब चला गया, तो क्यों ना हम फ़ायदा उठा लें वक्त का और हसन इब्न अली को अमीर शाम के हवाले कर दें, मनसब महफूज भी हो जाएगा, मुमकिन है और एक और विलायत मिल जाए एक और जगह की। ये जनाबे मेरे मुख्तार ने कहा, जिसे कुछ मौरखी ने नकल करके कहा कि ये तो इमाम हसन को कत्ल करना चाहता था, आप इसको हीरो बना के पेश करते हैं। खुदा के बंदो, ज़माना ऐसा आ गया ना, वो चाहते हैं कि चचा के अंदर की बात निकालें। चचा ने जब ये सुना तो एकदम बरस पड़े मुख्तार पे, और क्या कुछ नहीं कहा होगा, मैं वो सब तो नहीं कह सकता जो उन्होंने कहा, गुस्से में आके कहा कि तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू ये बात कह रहा कि मैं अली के लाल को फातिमा के लाल को इसके हवाले कर दूं, जब तक मेरे जिस्म में एक भी खतरा बाकी मैं इसका दिफा करूंगा, और डांटा पिटकारा। अब यह मेरे मुख्तार अपने चचा के कदमों में गिर गया, चचा जमाना ऐसा है, बस मैं यही चाह रहा था कि तेरे दिल की बात मालूम कर लूं, मैं और मेरे साथी तैयार हैं, आखिरी कतरे तक आखिरी लम्हे तक हम दिफा करेंगे। इमाम हसन को यकीन दिलाया कि मौला, अमीर मुख्तार ने कि मौला जब तक मेरे कौम कबीले का एक फ़र्द भी जिंदा है हम आप पर कोई आँच नहीं आने देंगे, किसी तरह की आँच नहीं आने देंगे। लेकिन कूफियों का किरदार सामने आ गया, क्योंकि जिसके पास हो जिसकी दावत नहीं दावत होती तो उसकी तरफ भागे भागे चले जाते थे हर एक के पास, अभी मज़ीद आता चला जाएगा। अभी तो मैंने पसमंज़र बताया कि क्योंकि बेस नहीं थी ना इनकी, मुख्तलिफ ख्याल किस्म के लोग थे, हर जगह से जमा हो गए थे, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, जहाँ से ज़्यादा पैसा मिल जाए, हत्ता कि किराए की जंग भी लड़ते थे, जंग के दौरान अपनी वफादारियाँ बदल देते थे, जंग के दौरान ब्रीफ केस चले और इधर वाले सिपाही उधर गए, उधर से ब्रीफ केस आया इधर के सिपाही उधर गए, इसके ऊपर अपनी वफादारियाँ बदल देते थे, माल कहाँ से ज़्यादा मिलेगा, किधर से ज़्यादा माल मिलेगा, वो माल चाहिए, ये बन गए थे, इस तरह के लोग हो गए थे कूफे के माल के चक्कर में। अगर ऐसा ना होता, मैं कहता हूँ कि दूसरे इमाम तक भी माहौल कुछ 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 निस्बतन कुछ बेहतर था, कि 4000 लोग तो साथ थे ना, 4000 लोग इमाम के साथ थे, इमाम हसन के साथ 4000 लोग साथ थे, लेकिन हुसैन तक नौबत कहाँ पहुँची, यही कूफा है। मसला क्या है, मैंने सारा बता दिया आपको कि कूफे के लोगों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, आज तक दे रहे हैं, अभी भी इस गुज़िश्ता जंग में भी कूफे के लोग सबसे ज़्यादा शहीद हैं, अब भी जाए सद्दाम के ज़माने में क़याम हुआ तो सबसे ज़्यादा शहीद कूफे के थे, कूफे के लोग। लेकिन होता यह है कि बेवफाई की है मासूम से, नबी या नबी ज़ादे से बेवफाई करना, ये क्या हुआ, आज तक वो अपना धोना चाह रहे हैं, दाग नहीं धुलना, हालांकि ज़ुहैर बिन क़ैन कूफ़ी, हुर कूफ़ी, हबीब बिन मज़ाहिब कूफ़ी, आबिद बिन शबीब शाकिरी कूफ़ी, मुख्तार सक़फ़ी कूफ़ी, इब्राहिम बिन मालिक अशर कूफ़ी, ये जितने हीरोज़ हैं ना हमारे, ये भी कूफ़ी हैं, मज़े की बात यह है सब कूफ़ी, लेकिन दगा की है हुसैन के साथ, बेवफाई की अक्सरियत ने, यानी अक्सरियत ने बेवफाई की किसके साथ, हुसैन के साथ, नबीज़ादे के साथ। इसलिए दो किस्म के अफराद, इशारा कर रहा हूँ बस, पहले कभी अर्ज़ किया था कि दो किस्म के अफराद हैं कूफे में, दोनों ही अफसोस का इजहार कर रहे हैं, एक मजलूमियत पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं जिनकी मजम्मत की है, सानिया ज़हरा ने अपने खुतबे में, मैं तो नहीं छुपाता कभी मौका मिलेगा उन खुतबात पे पढ़ दूंगा, मुझे काय का खौफ है, जब है एक चीज़ सनद है मुस्तनद है और मेरे पास उसका जवाब भी है तो मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों छुपाऊँ, छुपाए वो जिसके पास कोई जवाब ना हो, मैं तो आपको अभी जवाब दे रहा हूँ। दो किस्म के थे लोग और दोनों अफसोस कर रहे थे कूफे में, एक वो थे अफसोस करने वाले कि जिन्होंने खत लिखे और बाहर थे कैद में भी नहीं थे, जब ये वाकया हो गया आले रसूल कैदी बनकर कूफे में दाखिल हुई, अफसोस का इजहार करते थे, रोते भी थे, बड़ा जुल्म हो गया आले रसूल में, बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म कर दिया गया। तो सानिया जहरा के भी जुमले हैं और सीधे सज्जाद के भी जुमले उनकी है, अफसोस के इदार को देख के कहते अच्छा तो फिर हमें कत्ल किसने किया है, ये जनाब सीधे सज्जाद का भी जुमला, अच्छा तुम्हें अफसोस है, ہم پر جو کچھ اور بیت رہی ہے تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ مطلب کیا تھا؟ جو تم ہی لوگوں نے تو خط لکھے، تم ہی لوگوں نے تو بلایا، تم ہی لوگوں نے میرے بابا کی بیعت کی، ان کی نیابت میں یعنی جناب مسلم کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ ایک یہ ہے، یہ بھی قیامت تک ملے گا آپ کو، یہ بھی قیامت تک ملے گا۔ اور دوسرا افسوس کرنے والا کون تھا، یہ باری باری کریکٹر بتاتا جاؤں گا، لیکن ابھی اجمان سن لیجئے، اجمالی طور پہ سن لیجئے، بطور کلی جواب سن لیجئے۔ دوسرا رونے والا وہ تھا جو قید خانے میں زنجیروں سے ماتم کر رہا تھا امیر مختار، جن زنجیروں میں اسے جکڑا گیا تھا ان سے ماتم کر رہا تھا، اپنے آپ کو لہو لہان کر رہا تھا امیر مختار۔ دوسرا گریہ وہ ہوتا ہے جو امیر مختار پیدا کرتا ہے۔ قید خانے میں جتنے تھے، سلیمان بن سرد خزائی قید تھے بیچارے، قید میں تھے، مسیب قید میں تھے، ابراہیم بن مالک اشتر قید میں تھے، انہیں بھی جب واقعے کا علم ہوا قید میں تھے، وہاں چلاتے تھے، روتے تھے، ان میں بھی وہ تھے جو خط لکھنے والے تھے، قیدی تھے۔ تو دونوں میں فرق ہوا نا، ایک آزاد تھا ایک قید تھا بیچارہ، جیسے قید سے رہا ہوا اپنا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا۔ تو وہ یاد رکھنا، گریہ وہی گریہ ہے جو مختار کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یزیدیت کے خلاف یا آنکھوں سے بہنے والا اشک اگر یزیدیت کے خلاف انسان کے دل میں جذبات بیدار نہیں کرتا تو پھر اپنے آنسو پہ غور کرنا چاہیے اس شخص کو، اس سے زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا میں۔ بس ایسے ہی ایک گریہ کرنے والے کے مسائل پہ ختم کرتا ہوں، ہر سال اس تاریخ کو یہی مصیبت پڑھتا ہوں۔ چند جملے سماعت فرما لیجئے، کل پھر جہاں سلسلے کو چھوڑا ہے یہی سے سلسلہ لے کر آگے بڑھائیں گے گفتگو کا۔ تماشا دیکھنے والے بھی، افسوس کرنے والے بھی ہیں، آگے آگے سر ہیں نیزوں کے، نیزوں پہ شہدا کے، پیچھے پیچھے ناقے ہیں، پشت ناقب ہیں، سیدانیاں ہیں، رسول زادیاں ہیں، سر برہنہ، بالوں سے پردہ کیا ہوا ہے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ معاذ اللہ دنیاوی انداز میں دیکھیں تو اس سے زیادہ کسی خاندان کی اہانت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن جانتی ہے ثانیہ زہرا کہ اس مصیبت کے بدلے میں اللہ نے کتنی عزت ہمارے لیے رکھی ہے نا، ایسا برداشت صبر کر جانتا۔ ہوا یہ کہ جب یہ قافلہ گزر رہا ہے تو زینب کے کانوں میں ایک آواز آئی، کوئی بی بی آواز دے رہی ہے، حسین حسین حسین۔ تڑپ کر ذرا سے بالوں کی اوٹ سے زینب نے دیکھا، دیکھا ایک بی بی سر پہ چادر لیے چلاتی پھر رہی مجمے میں، حسین حسین حسین۔ زینب نے پوچھا، بی بی کس کو آواز دیتی ہے، کون سا حسین؟ تھا میرا بچہ، قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا، نہ جانے کہاں کھو گیا۔ سالیہ زہرا فرماتی ہے، جا، ایک ٹھنڈی سانس بھر کے کہتی ہے، جا، تیرے بچے سے، تیرے حسین سے میرے حسین کی مصیبت نہیں دیکھی گئی، وہ واپس چلا گیا گھر، جا، تجھے گھر میں مل جائے گا۔ حیرت سے اس نے کلمہ سنے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کی کہ اس بیوی نے کہا کیا ہے، لیکن خیر گھر آئی۔ گھر آ کر عجیب منظر دیکھا کہ بچہ تکیے میں منہ دے کر ہچکیاں لے کر رو رہا ہے، تڑپ اٹھی، ماں ہے نا تڑپ اٹھی، کلیجے سے لگا لیا، میرے بچے تو تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا، پھر یہ روتا کیوں ہے اس طرح؟ وہ بچہ ہچکیاں لے کر کہتا ہے، کاش میں نہ گیا ہوتا، اے ماں کاش میں نہ گیا ہوتا، میں نے یہ تماشا نہ دیکھا۔ تڑپ کر کہتی ہے، بیٹا آخر ہوا کیا، بتا تو صحیح، کیا مسئلہ ہوا؟ کہا، ماں بیویوں کا سر کھلا ہونا اپنی جگہ، نیزوں پہ جو سر دیکھے ان کا نورانی ہونا اپنی جگہ، بس ایک بات مجھے بتا، کیا 6 ماہ کا بچہ بھی جنگ کر سکتا ہے؟ اما جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں، شیر خار کا سر لو کے سینہ پہ دیکھ کر آ رہا ہوں، اس بچے کا کیا کچھ، اسے برداشت نہیں ہوا۔ ماں کہتی ہے، بیٹا تو نے پوچھا نہیں کہ یہ کس کا خاندان ہے؟ بچہ کہتا ہے، ہاں میں نے پوچھا تھا تو کسی نے بتایا تھا کہ یہ حسین کا خاندان ہے۔ کہ بیٹا یہ نام ایسے مت لیا کر، تجھے نہیں معلوم میں نے مدینے والے حسین کے نام پہ تیرا نام حسین رکھا ہے، बच्चा कहता है अम्मा हाँ लोग यही कह रहे थे मदीने वाला हुसैन कत्ल कर दिया गया। तड़प कर कहती है बेटा ऐसे ना कहे, मेरा मौला हुसैन अली और जहरा का दिलबर है। अम्मा यही कह रहे थे लोग हुसैन इब्ने अली कत्ल किया गया। बेटा हमारा हुसैन रसूल का नवासा है। मुंह पीट कर बच्चा कहता है अम्मा तू लुट गई, लोग यही कह रहे थे रसूल खुदा का नवासा हुसैन अरे तेरा मौला कत्ल हो गया, अम्मा तेरा मौला कत्ल हो गया। बस इतना सुना चादर सर पे डाली दौड़ी बाहर बाजार। अब पूछने की जरूरत थोड़ी, एक सर को देख रही है वो किसी नजे पे हुसैन का सर है, किसी पे अली अकबर का, किसी पे उन्होंने मोहम्मद के, और एक सर को देखकर तो हैरान हो गई हैवान की गर्दन में। तड़प कर आगे बढ़े, नाकों के पास आकर चिल्ला चिल्ला कर कहती है तुम्हें कोई जैनब है, तुम्हें कोई उम्मे कुलसुम है। कोई बीवी बात का जवाब नहीं देती, क्यों? कहीं ऐसा ना हो पहचान ली जाए वो बीवी। हर नाके के पास आकर पुकार रही है, फिर उसी नाके के पास आई जिस बीवी से गुफ्तगू हुई थी, वहां आकर कहती तुझे कसम देती हूं तेरे मकतूल की हुसैन, मुझे बता बीबी तू कौन है, मेरी शहजादी जैनब कहाँ है। अब जैनब से भी बर्दाश्त ना हुआ, जरा से बात चेहरे से हटा कर कहती उम्मे हबीबा भूल गई, तुझे बहुत शौक था ना हम तेरे मेहमान बने, और हमने क्या कहा था उम्मे हबीबा ऐसा ना हो हम तेरे मेहमान बन जाए और तू हमें पहचान भी ना सके। अला लानतुल्लाह अला अल-क़ौमिज़ ज़ालिमीन وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو مومنین ہمارے درمیان نہیں رہے بار الہ ان سب کی مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ نین میں جگہ عنایت فرما، بار الہ ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری عزت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ بس مختصر سی دعا کیے دیتا ہوں، تمام مومنین حاضرین غائبین کی مومنات کی مائیں بہنیں جو ہماری تشریف فرمائیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، اور جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کہا گیا غالب امام خمینی شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی، اپنے تمام شہیدوں مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔